नमस्कार भारत 8 मई दिन मंगलवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते से अमेरिका अलग होगा या नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप आज करेंगे घोषणा। भारत के कई राज्यों में तूफान का खतरा, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी।
लोगों को अलर्ट जारी कर दिया, जिलों ने अपने अपने हिसाब से तैयारी कर ली। कुछ जिले हमें जो फीडबैक मिल रहा है उन्होंने अपने यहाँ छुट्टी कर दी है, तूफान की आशंका है।
बताएंगे आपको जम्मू कश्मीर के उस अध्यापक के बारे में जिसे अब मुजाहिद प्रोफेसर कहा जा रहा है।
क्या हुकूमत कश्मीर को अफगानिस्तान बनाना चाहती है? क्या वो चाहते हैं कि यहाँ हर घर से बंदूक निकले, हर पढ़ा लिखा नौजवान बंदूक उठाए?
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। फ्रांस ने कहा है कि वो, जर्मनी और ब्रिटेन अब भी ईरान के साथ परमाणु समझौते के मुद्दे पर अडिग हैं और इस बात से कोई असर नहीं पड़ता है कि अमेरिका क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये तीनों ही देश समझौते को हर सूरत में बचाने के पक्ष में हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी पहले ही ये कह चुके हैं कि यदि अमेरिका के अलावा तीनों देश ईरान के लाभ की गारंटी देते हैं तो तेहरान इस समझौते पर बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस समझौते को ख़त्म करने की बात कह रहे हैं और वो आज इस पर अपना फैसला भी सुना देंगे। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के पूर्व विशेष सहायक और व्हाइट हाउस की ओर से परमाणु समझौते के मध्यस्थ रहे रॉबर्ट मैले का कहना है कि अमरीका के बिना भी ये समझौता बना रह सकता है। रॉबर्ट मैले ने कहा कि
It's going to be a tough decision in Iran. The politics there are extremely polarized as well. But the case that Europe has to make.
ईरान में ये फैसला लेना मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत पेचीदा हैं। लेकिन तब यूरोप को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईरान समझौते को बनाए रखे। यदि अमेरिका खुद समझौते से अलग कर लेता है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह समझौता बरकरार रहे। रॉबर्ट मैले के शब्द। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने बच्चों को सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। बी बेस्ट अभियान की घोषणा के साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मकसद सेहतमंद जिंदगी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके साथ ही सोशल मीडिया को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित करना भी है। मेलानिया ने इस बात के भी संकेत दिए कि व्हाइट हाउस में रहते हुए वो सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल पर काम करना चाहती हैं। लेकिन दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि क्या सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी सलाह का ख्याल रखेंगे। मेलानिया ने बी बेस्ट अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि
As a mother and as first lady, it concerns me that in today's fast-paced
बतौर माँ और प्रथम महिला मुझे कई बार इस बात की चिंता होती है कि आज की भागमभाग भरी दुनिया में बच्चे अपनी भावनाओं को सही से जता नहीं पाते हैं और ऐसे में कई बार ये नुकसानदेह हो सकता है, उन्हें लत लग सकती है। मैं इस बात पर पूरा भरोसा करती हूँ कि बड़े होने के नाते हमें बच्चों को एक सेहतमंद और संतुलित जिंदगी के बारे में बताना चाहिए था। ये थे मेलानिया के शब्द। इसराइल कैबिनेट के एक मंत्री ने कहा है कि यदि बशर अल असद ने ईरान को सीरिया के भीतर से इसराइल पर हमला करने दिया तो उनका और उनकी सत्ता का अंत होगा। सीरिया में ईरान की सेनाएं तैनात हैं जहां वे सरकार की ओर से गृह युद्ध में लड़ रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी स्वास्थ्य जाँच के लिए मंगलवार को ब्रिटेन जाएंगे। 75 वर्षीय बुहारी को स्वास्थ्य से जुड़ी क्या परेशानियां हैं इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। वे पिछले साल भी ज्यादातर समय ब्रिटेन में ही रहे। बीबीसी संवाददाता का कहना है कि देश में बढ़ते असुरक्षा के माहौल के चलते उनकी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को सेंट्रल नाइजीरिया में एक हथियारबंद संगठन ने 50 लोगों को मार डाला। इसके अलावा उत्तर पूर्व में जिहादी संघर्ष भी जारी है। सेना का कहना है कि उसने हजारों लोगों को बोको हरम के चंगुल से बचाया है। हालांकि ऐसा ही एक बयान पहले भी आया था लेकिन बचाए गए लोगों से जुड़ा कोई सबूत अभी तक नहीं दिया गया है। लीबिया की सेना के कद्दावर नेता खलीफा हफ्तार ने अलकायदा के कब्जे वाले डरना बंदरगाह पर नियंत्रण की आक्रामक शुरुआत की घोषणा कर दी है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, संदीप सोनी के साथ। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में भी आज धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर ओले गिर सकते हैं, बारिश हो सकती है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे आगे। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ये घोषणा करने वाले हैं कि ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते से अमेरिका अलग होगा या नहीं। यदि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समझौते को ख़त्म करने की घोषणा करते हैं और यदि समझौते को बरकरार रखने की बात करते हैं, दोनों ही सूरतों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। आइए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन में मौजूद बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी के पास। इरम, आप सुन पा रही हैं हमें?
जी बिल्कुल
जी। काफ़ी दबाव दिख रहा है इरम राष्ट्रपति ट्रंप पर कि वो ईरान के साथ समझौता ना तोड़ें।
जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि आज ही यूके के जो वजीर खारजा हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो अमेरिका इसी खास एजेंडे के साथ आए हैं कि वो कन्विंस कर सके ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि वो मुआहदा जो है, समझौता जो है, वो तस्लीम कर रहे हैं कि इसमें गलतियां हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है इस मुआहदे को तोड़े ना, इस मुआहदे की मुद्दत पूरी करते होने से पहले मजीद और अपनी बात जो है ईरान से बनवाए। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि कुछ दिन पहले फ्रांसी प्रेसिडेंट वो भी आए हुए थे यहाँ पर, फिर जर्मनी ने भी अपनी कोशिशें की, एंगेला मर्केल ने, कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस कर सके कि मुआहदा तोड़ा ना जाए, समझौता तोड़ा ना जाए, क्योंकि समझौते के मुताबिक हम जानते हैं कि उस समझौते में जो 2015 में तय पाया था उसके मुताबिक 97% जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो ईरान जो है मुल्क से, अपने मुल्क से बाहर मुंतकिल कर देगा। साथ ही साथ 15 साल तक वो मजीद ये फ्यूल नहीं बनाएगा। अब यूरोपियन साथी जो है अमेरिका के, वो ये चाहते हैं कि इस मुआहदे को कायम रखा जाए, समझौते को कायम रखा जाए, और फिर इस दौरान ईरान से मजीद अपनी चीजें मनवाई जाए। लेकिन साथ ही साथ यूरोपियन ममालिक ये भी कह चुके हैं कि अगर अमरीका साथ नहीं देता तो तब भी वो तेहरान के साथ अपना मुआहदा तोड़ेंगे नहीं, और उससे मजीद पाबंदियां जो हैं जो 2015 के समझौते से पहले लगी थी वो अमरीका के साथ नहीं जाएगा। तो अब अमरीका की तरफ सबकी नजरें हैं कि कल अमरीकी वक्त 2 बजे प्रेजिडेंट ट्रंप ने खुद ट्विटर पर कहा है कि वो बताएंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो एक बहुत ही कंफ्यूजन है, क्योंकि बीच में हमने ये देखा कि जब ये यूरोपियन ममालिक के लोग आए, सरकार आई, तो उन्होंने थोड़ा नर्म रवैया भी अपनाया, लेकिन फिर आज ही उन्होंने ट्वीट पे जॉन कैरी, जिनके होते हुए ये डील की गई थी, जिन्होंने एफर्ट करके डील की थी अपने यूरोपियन साथियों को मिला के, तो वो अब उसको गलत कह रहे हैं, मैस कह रहे हैं।
अच्छा इरम, ये बताइए कि अमरीकी मीडिया में क्या कहा जा रहा है, घरेलू राजनीति का कितना दबाव होगा अमरीकी राष्ट्रपति पर ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़ें या ना तोड़ें?
देखें, अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें, तो वो यही कह रहे हैं कि ये कदम जो प्रेसिडेंट ट्रंप उठाएंगे वो अपने वोटर्स को खुश करने के लिए उठाएंगे, क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप, उनको खदशा है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये डील खत्म कर देते हैं कल ऐलान करके, तो इसका मतलब है कि ईरान खुलेआम कहेगा कि अमेरिका ने अपना समझौता तोड़ा है, तो अब उससे कोई पाबंदी नहीं है कि वो न्यूक्लियर फ्यूल बनाए। वो ये कह सकता है कि हमने तो कोशिश की थी, लेकिन अमरीका ही अमन नहीं चाहता, अमरीका ही समझौते को बरकरार रखना नहीं चाहता। खुद ईरान के जो सरकार है वो ये कह चुकी है कि ये फैसला अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया कि वो समझौते को कायम नहीं रखते, तो फिर इसका नुकसान अमेरिका उठाएगा और ये तारीखी रिग्रेट होगा अमेरिका के लिए। अगर हम फॉक्स न्यूज की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़े हैं कि ये डील कमजोर है।
ये थी वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी। जिन श्रोताओं ने हमें ज़रा देर से सुनना शुरू किया है उन्हें हम बताना चाहेंगे, ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते से अमेरिका अलग होगा या नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप इसकी घोषणा करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की वजह से एक पर्यटक की मौत हो गई है, कुछ अन्य पर्यटक घायल हुए हैं। इस खबर की चर्चा थोड़ी ही देर में, लेकिन पहले बात भारतीय मौसम विभाग की उस चेतावनी की जिसमें उत्तर और पश्चिम भारत और भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी आज आंधी, तूफान, ओले गिरने और बारिश की आशंका जताई गई है। ये चेतावनी आज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कल राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं अपना असर दिखा चुकी हैं और बीती रात दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में तेज हवाओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। दिल्ली में बह रही ठंडी हवाएं बता रही हैं कि आसपास बारिश भी हुई है। मौसम विभाग से इस तरह की चेतावनी आने के बाद किस तरह की तैयारी की जाती है ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने संबंधित विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी टीपी गुप्ता से बात की।
देखिए, जिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारा राहत कार्य देखता है। उनके पास जो भी जिले में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, आपदा की स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरा पावर है, जिसको चाहे वो इंगेज कर ले और राहत कार्य में वो लगाए। जो कोऑर्डिनेशन उनको चाहिए NDRF से, आर्मी से, एयरफोर्स से, वो हम यहाँ से देते हैं उनको।
जैसे भी जो पिछले दिनों आई आंधी तूफान आया, इतना बड़ा नुकसान हुआ आगरा में, इतने सब चीज़ों के बावजूद ये कैसे हो जाता है, जनहानि और जो सामान वामान है उनकी भी इतनी हानि कैसे हो जाती है? ख़ास तौर पे मैं जनहानि की बात कर रहा हूँ।
अधिकतर जो जनहानि हुई घरों के गिरने से हो गई, जो कमज़ोर मकान, कच्चे मकान थे उससे हुई। जैसे टीन विन उड़े, किसी के ऊपर गिर गए, कुछ लोगों ने जिनको जानकारी नहीं थी वो इस आंधी पानी बारिश से बचने के लिए पेड़ की शरण लिए और तूफान में पेड़ गिर गया, उससे हानि हो गई। ये सब कारण थे। इधर मौसम विभाग से हम लोग काफ़ी कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ से थोड़ा जनरल डायरेक्शन जारी होते थे, 24 घंटे 48 घंटे का डायरेक्शन जारी होता था। अभी अब जैसा उन्होंने देना शुरू किया कि इन इन जिलों में आएगा, लेकिन इधर एक थोड़ा सा प्रोग्रेस ये हुआ है कि 3 घंटे पहले वो कह रहे हैं कि हम ये पता कर लेते हैं कि किस जगह से ये उठ रहा है। उनको कहा गया है कि जैसे आपको रडार पे आपके आ जाए यहाँ इस जिले में, इस जगह पे, इस क्षेत्र में ये आंधी तूफान उठने वाला है, आप हमें ईमेल के अलावा टेलीफोन पर भी सूचना दें या संबंधित DM को दे दें, हमें दे दें, हम लोग 3 घंटे में ही जहाँ जितना जल्दी हो सके उसको कम्युनिकेट करने का प्रयास करेंगे डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट अपने नीचे मिशनरी को एक्टिव करके पहला प्रयास तो ये होगा कि जो लोग कच्चे मकानों में, कमजोर मकानों में हैं, उनको रेस्क्यू करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए।
अभी जो आजकल के बीच में जो अलर्ट जारी किया है, इसमें कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है कि ऐसी जगहों पे जो जहां ज्यादा इसकी आशंका है?
तैयारी है। अब लोगों को अलर्ट जारी कर दिया, जिलों ने अपने अपने हिसाब से तैयारी कर ली। जैसे मैंने बताया कि कुछ जिले हमें जो फीडबैक मिल रहा है उन्होंने अपने यहाँ छुट्टी कर दी है, तूफान की आशंका है, एक दिन की छुट्टी कर दिया उन्होंने स्कूलों में।
तो जैसा कि आपने सुना, तूफान को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, आप भी ध्यान रखिएगा। कार्यक्रम में आगे जम्मू कश्मीर के उस शिक्षक की कहानी जिन्हें अब मुजाहिद प्रोफेसर कहा जा रहा है। उससे पहले ये खबर जानना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की वजह से एक पर्यटक की मौत हो गई है, कुछ अन्य पर्यटक भी घायल हुए हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। माजिद साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें?
बिल्कुल।
तो बताइए साहब कि ये क्या और ब्यौरा है आपके पास इस बारे में?
बिल्कुल, देखिए, ये श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, यानी कि जिला बडगाम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है नारबल, और वहाँ पे ये घटना पेश आई है। कल की घटना है ये, और वहाँ ये एक बस थी जो कुछ पर्यटक थे, तकरीबन 40 लोगों का ग्रुप था ये, जो एक गाड़ी में गुलमर्ग जा रहे थे जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये दो तीन गाड़ियाँ और भी पथराव की जद में आ गई, और इसमें एक चेन्नई के एक पर्यटक को काफ़ी चोट लगी थी, और उनके दूसरे जो कलीग्स थे वो भी घायल हो गए हैं, और जिसके बाद अस्पताल में इनकी मौत हो गई है। और इस टून पेल्टिंग में एक कश्मीरी महिला भी, हिंदवाड़ा की एक लड़की को भी चोट लगी है। तो इसके बाद जो है इसके बाद कश्मीर में कई कॉर्नर से इस इंसिडेंट को कंडम किया गया।
माजिद, ये बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर में या श्रीनगर के या कश्मीर के किसी हिस्से में पर्यटकों पर पथराव की ये अपनी तरह की पहली घटना है, या हाल फिलहाल की ताज़ा घटना है, या इससे पहले इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं?
دیکھیے کشمیر کی یہ روایت تو نہیں رہی ہے, ہمیشہ کشمیریوں نے ٹورسٹ کو بہت ہی ہاسپٹیبلٹی کے ساتھ یہاں ریسیو کیا ہے, لیکن پچھلے دنوں بھی ایک گھٹنا ایسی ہوئی دکشنی کشمیر کے اننت ناگ میں, جہاں پہ تقریباً 8 ٹورسٹ گائل ہو گئے جو پتھراو کی زد میں آ گئے, اور اس سے پہلے بھی کچھ خبریں آئی تھی, تاہم پولیس نے ان خبروں کی پشٹی نہیں کی. اور میرے خیال سے جو پچھلے 30 سالوں کا جو یہاں پہ ملٹنسی جو پچھلے 30 سالوں سے چل رہی ہے, تو اس طرح کے انسیڈنٹ اب جو ہے سامنے آنے لگے ہیں کہ جب ٹورسٹ اس کو پتھر باز یا سٹون پیلٹر نشانہ بنا رہے ہیں.
ماجد جموں کشمیر کے پورو مکھیہ منتری ہیں اور نیشنل کانفرنس پارٹی کے نیتا ہیں عمر عبداللہ, انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ اس جس طرح سے پتھراو کیا گیا پریٹکوں پر, یہ گھر آئے مہمان کو مارنے جیسا ہے. یہ بتائیے کہ کیا حال فی الحال میں یا تھوڑا پرانے پیچھے دنوں میں جائیں تو پریٹن پر, پریٹکوں کی سنکھیا پر کچھ فرق آیا ہے پچھلے کچھ ورشوں میں اس طرح کی گھٹناؤں کی وجہ سے؟
بالکل, دیکھیے کشمیر کی جو کشمیر کے جو حالات ہیں وہ پچھلے 3 ورشوں سے یعنی 2016 سے اشانت ہیں, اور ٹوریزم کے ارائیول میں کافی ڈکلائن آیا ہے کشمیر میں, اور اس کا وجہ ہے کہ کشمیر کے حالات پچھلے 3 سالوں سے کافی خراب چل رہے ہیں. برہان وانی جو حزب المجاہدین کے ایک کمانڈر تھے جن کی موت ہو گئی تھی 2016 میں ایک مٹبھیڑ میں, اور اس کے بعد کشمیر میں تقریباً 6 مہینے تک انریسٹ چلا تھا, اور اس کے بعد لگاتار حالات اشانت بنے ہوئے ہیں, اور جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے اس کو کافی نقصان ہو رہا ہے, اور کافی کم ٹورسٹ کشمیر آ رہے ہیں, اور اس طرح کی گھٹناؤں سے بھی ایک بہت ہی برا میسیج جا رہا ہے. جیسے کہ پچھلے میں نے کہا کہ اننت ناگ میں بھی ایک گھٹنا ہوئی, یہ ایک دوسری گھٹنا ہے, اور اس سے پہلے ایک اسکولی بس کو نشانہ بنایا گیا. تو خاص کر جب پریٹکوں کی ہم بات کریں گے تو اس سے ایک رانگ میسج آئے گا, اور کشمیر کے ٹوریزم سیکٹر کو اور بھی دھچکا لگ سکتا ہے, ٹورسٹ یہاں نہیں آئیں گے.
جموں کشمیر میں پتھر بازی کی وجہ سے ایک پریٹک کی موت, کچھ انیہ پریٹک گھائل. جانکاری دے رہے تھے ماجد جہانگیر شری نگر سے. اور آئیے ایک بار پھر شری نگر سے ہی بی بی سی سنواددتا ریاض مسرور سے سنتے ہیں کشمیر یونیورسٹی میں پڑھانے والے اس شکشک کی کہانی جو سرکشا بلوں کے ساتھ مٹ بھیڑ میں مارے گئے.
سری نگر سے پورب کی اور 40 کلومیٹر دور گاندربل ضلع کے چنن پورا گاؤں میں جگہ جگہ بینر لگے ہیں جن پر لکھا ہے کہ تم کتنے ڈاکٹر مارو گے, ہر گھر سے ڈاکٹر نکلے گا. بینر پر ہلکی داڑھی والے چشمہ پہنے پروفیسر رفیع بٹ کی تصویر لگی ہے.
ڈاکٹر مارو گے, ہر گھر سے ڈاکٹر نکلے گا.
ڈاکٹر رفیع کل دکشنی ضلع شوپیان میں سینا کے ساتھ مٹبھیڑ کے دوران انی 4 ساتھیوں سمیت مارا گیا. وہ شکروار کو کشمیر یونیورسٹی کے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں لیکچر کے بعد بھومیگت ہو گئے اور 40 گھنٹے بعد شوپیان میں سینا کے گھیرے میں پائے گئے. ان کے سہ پاٹھی اور چھاتر چھاترائیں بھی اس اچانک پریورتن پر حیران ہیں.
یہ تو میرے لیے بھی کیا, پوری یونیورسٹی کی جو بھی اسے جانتے ہیں لڑکے, خاص کر اسٹوڈنٹ, جب ہم سیٹرڈے کے دن ادھر گئے مسنگ رپورٹ ڈالنے کے لیے تو ادھر وہ اسٹوڈنٹ سارے رو رہے تھے, بہت ہی ہیلپ فل تھا.
جب بھی ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی کی بات کریں گے ہمارے پورے علاقے میں, پورے ضلع میں, پورے ڈسٹرکٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جیسا کوئی بھی انسان نہیں تھا, بالکل کول مائنڈڈ انسان تھا.
3 ورش پہلے ڈاکٹر رفیع کی شادی ہو چکی تھی. ان کی پتنی کہتی ہیں کہ پرشاسن نے انہیں جھوٹ بولا تھا کہ وہ مڑبیڑ کی جگہ پہنچیں تو ان کے شوہر کو سرنڈر پر راضی کیا جائے گا.
میں نے اس کو بولا کہ میں بھیک کے طور پہ آپ کو یہ مانگتی ہوں, ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے وہاں تک پہنچنے دو تو وہ میری وجہ سے نکلے گا. انہوں نے بتایا چلو ٹھیک ہے انکاؤنٹر ڈیلے کرتے ہیں, مگر انہوں نے انکاؤنٹر ڈیلے نہیں کیا تھا. ہم ابھی راستے میں ہی تھی, مجھے انفارمیشن ملی کہ وہ شہید ہو گیا.
پچھلے کچھ ورش سے اچھے شکشا پانے والے یوا جب چرمپنتھی گٹو میں شامل ہونے لگے تو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی نے ادھیاپکوں اور پروفیسروں سے اپیل کی تھی کہ وہ یواؤں کو اتیواد سے دور رکھیں. پرنتو جب ایک نیمت پروفیسر ہی کلاس میں لیکچر دینے کے بعد بھومیگت ہو جائے اور 40 گھنٹے بعد مڑبیڑ میں مارا جائے تو کشمیر کا پرشن اور الجھا ہوا لگتا ہے. ان مرتیوں کے ورودھ الگاوادیوں نے آج سیکرٹریٹ کے گھیراؤ کی کال دی تھی, پرنتو پرشاسن نے اسے وفل کر دیا. میرویز عمر فاروق گھر سے مارچ کے لیے نکلے تو انہیں گرفتار کیا گیا. گرفتاری سے پہلے انہوں نے شکشکوں کے بندوق اٹھانے کے لیے پرشاسن کو دوشی ٹھہرایا.
اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف یہاں کی حکومت اور ان کی انٹی کشمیر پالیسیز ہیں. کیا حکومت کشمیر کو افغانستان بنانا چاہتی ہے، کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہر گھر سے بندوق نکلے، ہر پڑھا لکھا نوجوان بندوق اٹھائے؟ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، حریت قیادت یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہی ان کا پلان ہے۔
ڈاکٹر رفیع کیول ناگرک شاستر کے وشیشجی ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے کئی راشٹریہ اور انتراشٹریہ کانفرنسوں میں بھاگ لیا تھا اور وہ چھاتروں اور ریسرچ اسکالرز میں سامانیہ روپ سے لوکپریہ تھے، لیکن 40 گھنٹوں تک بھومی گت ہونے کے بعد جیسے ان کی پہچان ہی بدل گئی۔ جموں کشمیر پولیس کے مہا نردیشک شیشپال وید کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر رفیع کے 2 کزن مارے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کے کارن وہ اتیواد کی طرف گئے ہوں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ریڈیکلائزیشن بھی ڈاکٹر رفیع کے مانسک پریورتن کا کارن ہو سکتا ہے۔ کچھ مہینے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالر منان وانی بھی بھومی گت ہو کر حزب المجاہدین میں شامل ہو گئے ہیں، پرنتو ڈاکٹر رفیع پہلے پروفیسر ہیں جنہوں نے کسی سشستر گھٹ میں جانے کا بیڑا اٹھایا۔ 30 ورش پہلے جب یہاں چرم پنتھ پر آدھارت آندولن شروع ہوا تو کئی پروفیسر چرم پنتھیوں کا پکش لینے پر رہسیہمئی حالات میں مارے گئے۔ ان میں ڈاکٹر عبدالحد گرو، پروفیسر عبدالحد وانی، ڈاکٹر غلام قادر وانی، ایڈوکیٹ جلیل اندرابی وغیرہ مہتوپورن نام ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اب بات کرناٹک کی، جہاں 12 مئی کو ودھان سبھا کا چناؤ ہونے والا ہے۔ چناؤ پرچار کے لیے پہنچے کانگریس ادھیکش راہل گاندھی نے کل کرناٹک میں پہلے بیل گاڑی کی سواری کی، پھر سائیکل بھی چلا کر پیٹرول ڈیزل کی بڑھی ہوئی قیمت کا مدعا اٹھا کر کیندر کی مودی سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی۔
دنیا میں پیٹرول کے دام گرتے جا رہے ہیں، پہلے 140 ڈالر پرتی بیرل ہوا کرتے تھے، آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں 70 ڈالر پرتی بیرل ہے۔ ہندوستان کی سرکار کے پاس لاکھوں کروڑ روپے آیا ہے، آپ میرے اس کو بھی نہیں بتاتے کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ آپ کے ہندوستان میں جو اسکوٹر چلاتا ہے، جو ٹرک چلاتا ہے، جو بس چلاتا ہے، جو گاڑی چلاتا ہے، اس کے جیب میں سے پیسہ نکل کر 5 سب سے امیر لوگوں
جیسا کہ آپ نے کانگریس ادھیکش راہل گاندھی کو سنا، یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا پیٹرول ڈیزل کی زیادہ قیمت کا مدعا کرناٹک کے استھانیہ مدوں سے کہیں بڑا ہے؟ بی بی سی سنواددتا آدرش راٹھوڑ نے بنگلورو میں ورشٹھ پترکار عمران قریشی سے یہی سمجھنا چاہا۔
دیکھیے، جو جس طریقے سے راہل گاندھی اور سدرامیہ جس طریقے سے اپنا ابھیان چلا رہے ہیں کرناٹکا میں بی جے پی کے خلاف، راہل گاندھی کا جو فوکس ہے وہ فوکس صرف مودی سرکار پہ ہے زیادہ تر، اور کرناٹکا سرکار کے ساتھ وہ کمپیئر کرتے ہیں، اس کو اس کی تلنا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ پیٹرول اور ڈیزل کا جو دام ہے اس پہ جو ٹیکس بڑھا ہے پچھلے 4 سال سے، کرناٹکا کانگریس اور خاص کر راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ کیندر سرکار نے اس کو پچھلے 4 سال میں 9 سمے سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی پیٹرول اور ڈیزل پہ بڑھایا ہے، اور اتنے ہی 4 سال میں، 4 یا 5 سال میں کرناٹکا سرکار جو سیلز ٹیکس جو پیٹرول اور ڈیزل پہ لگاتی تھی وہ اتنا ہی کم کرتے جا رہی ہے۔ اور ابھی آج پرستھتی یہ ہے کہ سارے دکشن بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل کا دام سب سے کم کرناٹکا میں ملتا ہے۔
اور کون کون سے مدعے اٹھائے ہیں راہل گاندھی نے جو تھوڑے ہٹ کر ہیں؟
ان کے 5-6 پوائنٹس ہیں، اس میں سے ایک پوائنٹ ہے ابھی نیا پیٹرول اور ڈیزل کے دام پہ، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ شیڈول کا شیڈول ٹرائب سب پلان کے لیے جو الوکیشن ہوتا ہے بجٹ میں، اس کے لیے کیندر سرکار سارے دیش میں اس سب پلان کے لیے صرف 50,000 کروڑ روپے الوکیشن کی ہے، مگر کرناٹکا سرکار ہر سال 27,000 کروڑ روپے شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب مطلب دلتوں کے لیے یہ الوکیشن کی ہے۔ مطلب وہ اگر آگے بھی سرکار کوئی دوسری سرکار بھی آ گئی تو وہ اس کو یہی فالو کرنا پڑے گا اس کو کہ سب پلان 27,000 کروڑ روپے سے کم اس میں الوکیشن نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ تھے بنگلورو سے ورشٹھ پترکار عمران قریشی کرناٹک کی چناؤ سے پہلے کی راجنیتی اور وہاں کی بیان بازیوں پر اپنی رائے رکھ رہے تھے۔ آئیے ایک نظر دلی سے چھپنے والے اخباروں کی سرخیوں پر۔ بھومی کا رائے کئی اخباروں کے ساتھ اسٹوڈیو میں آ چکی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آندھی کی تصویریں نظر آ رہی ہیں آج تو۔
جی، پہلی جو اخبار میں نے لیا ہے وہ انڈین ایکسپریس ہے، اور انڈین ایکسپریس نے اپنے پہلے پنے پر کل آئے طوفان کی ایک تصویر چھاپی ہے، اور یہ بیکانیر کی تصویر ہے جس میں دھول بھری آندھیاں چلی ہیں، اور صرف راجستھان نہیں ہریانہ دلی میں بھی کل دیر رات کو تیز آندھی چلی، اور کہیں کہیں بارش کی بھی بات کہی گئی ہے۔
کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوائیں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے بڑھ رہی ہیں۔
جی، اور یہ دھول بھری آندھیاں تھی اس لیے لوگوں کو آنے جانے میں کافی دقت بھی ہوئی۔ اور اسی خبر کو آگے بڑھاتے ہوئے دینک جاگرن جو اخبار ہے وہ لکھتا ہے کہ طوفان میں دلی میں لی دو جان، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 2 ایمبولینس تھی، اس میں آگ لگ گئی ہے، और इस हादसे में जो है दो लोगों की मौत हो गई और कई जगह पेड़ गिरने से और जान माल की अभी जो खबर है वो दैनिक जागरण छाप रहा है कि दो लोगों की जान गई है, जो कि एक बुरी खबर है। और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार जो है वो तमिलनाडु के जिस शख्स की जम्मू कश्मीर में जो गुलमर्ग घूमने जा रहा था एक टूरिस्ट ग्रुप के साथ उसके वैन पर हमला किया पत्थरबाजों ने और उस हमले में 23 वर्षीय उस युवक की मौत हो गई है, इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। और ये
मायावती और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ वाली क्या खबर नज़र आ रही है?
ये अलायंस कर सकते हैं एसपी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ जो है, ये मायावती ने कहा है लोकसभा के लिए। और
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी
जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी है। एक इसे सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है युवाओं के बीच में, इसलिए इस खबर को लेना मुझे लेना चाहिए। क्राइम स्टोरी है, लेकिन इसमें यह है कि टिंडर जो एक डेटिंग ऐप है उसमें एक आदमी ने फेक आईडी बनाई और अपने को करोड़पति बताया, और जबकि उसका ऐसा कुछ भी नहीं था। एक लड़की ने उसे कॉन्टैक्ट किया टिंडर पे और उसके बाद इस तरीके से पैसे हड़पने का सारा मामला था, जब पैसे नहीं मिले तो उसकी हत्या कर दी गई।
ये हम बीबीसी हिंदी वेबसाइट पर ऐसी तमाम कहानियां आती रहती हैं जिनमें हम बता चुके हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया भूमिका समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बताने के लिए। और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। इंग्लैंड दौरे के लिए सरे काउंटी के साथ करीब 3 मैचों का करार करने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली 14 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इकलौते टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, ये पहले ही साफ हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मैच में बीसीसीआई विराट कोहली की जगह श्रेयस अय्यर को मौका दे सकता है। बेंगलुरु में आज बीसीसीआई चयनकर्ता कुल मिलाकर 6 टीमों की घोषणा करेंगे। इसमें इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारत और भारत ए टीम का ऐलान शामिल है। विराट कोहली जून में सरे के लिए व्यस्त रहेंगे, इस वजह से वो जून के आखिर में आयरलैंड के खिलाफ होने वाले 2 T20 मुकाबलों में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ऐसे में अजिंक्य रहाणे अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में भारतीय टीम की कमान संभाल सकते हैं। वहीं रोहित शर्मा को आयरलैंड के खिलाफ T20 टीम की कप्तानी मिलने की उम्मीद है। विराट के सरे काउंटी में खेलने के फैसले पर वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली कहते हैं,
अगर आप कहेंगे कि हमने अफगानिस्तान से भारत ने मैच जीता तो यही क्रिकेट फैन कहेंगे ये क्या बड़ी बात है, क्योंकि असली लड़ाई तो आपको इंग्लैंड में जीतनी है। तो यही कोशिश कर रहे हैं कि तो तैयारी अपनी उनकी अच्छी है, वो चाहते हैं कि वहाँ जाएं, उनको इस चीज का एहसास है कि इंग्लैंड में उन्होंने रन नहीं बनाए हैं और इस बार वो कप्तान है, प्रेशर है एक बार जाके सीरीज जीतने का, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम हार के आई है टेस्ट मैच टेस्ट सीरीज। तो ये निर्णय उनका अच्छा है क्योंकि उनको टाइम मिलेगा सीम और स्विंग बॉल खेलने का, कंडीशन जानने का।
वहीं आईपीएल 11 में हिस्सा ले रहे इंग्लिश क्रिकेटरों को बीच में ही स्वदेश वापस लौटना पड़ सकता है। इन खिलाड़ियों में बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के क्रिस वोक्स और मोइन अली, चेन्नई सुपर किंग्स के मार्क वुड और राजस्थान रॉयल्स के बेन स्टोक्स शामिल हैं। इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसके चलते ये खिलाड़ी टूर्नामेंट बीच में ही छोड़कर घर लौट सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज 24 मई से शुरू हो रही है, ऐसे में ईसीबी एक सप्ताह पहले अपने खिलाड़ियों को वापस लौटने का फरमान सुना सकता है। बेन स्टोक, क्रिस वोक्स और मार्क वुड का टेस्ट टीम में चुना जाना लगभग तय है, जबकि मोइन अली के नाम पर संशय बरकरार है। टेस्ट करियर में पहली बार उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में अंतिम 11 में शामिल नहीं किया गया था। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
कुछ ही देर में बजेंगे भारत में सुबह के 7, वक्त होगा कार्यक्रम के समापन का। उससे पहले खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में आज धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन अब भी ईरान के साथ परमाणु समझौते के मुद्दे पर अडिग हैं और इस बात से कोई असर नहीं पड़ता है कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने बच्चों को सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए बी बेस्ट नाम का एक अभियान शुरू किया है। इसराइल कैबिनेट के एक मंत्री ने कहा है कि यदि बशर अल असद ने ईरान को सीरिया के भीतर से इसराइल पर हमला करने दिया तो ये उनका और उनकी सत्ता का अंत होगा। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया गुरप्रीत कौर ने। अगला प्रसारण दिन भर समय जानते हैं आप भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। bbchindi.com है आपके साथ।